नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति के संदर्भ में हॉर्मुज जल डमरू मध्य को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का शुभारंभ किया। कहा, ये गलियारा संपर्क और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करेगा तथा पर्यटन को बढ़ावा देगा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी नेता सम्राट चौधरी कल राज्य में पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव प्रचार तेज। विभिन्न दलों के शीर्ष नेता प्रचार में जुटे। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में एक बिजली संयंत्र में हुए विस्फोट में 9 श्रमिकों की मौत। राष्ट्र ने आज संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 136वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच जारी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को खुला तथा सुरक्षित रखने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों ने सभी क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का शुभारंभ किया। देहरादून में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस गलियारे के उद्घाटन से उत्तराखंड की प्रगति में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई है।
देहरादून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर से इस पूरे क्षेत्र का कायाकल्प होने जा रहा है। पहला फायदा तो ये है, इसे समय बचेगा, आना जाना सस्ता और तेज होगा, और दूसरा बड़ा फायदा रोजगार का होगा। अब इसके निर्माण में 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए तो हजारों श्रमिकों को काम मिला।
श्री मोदी ने समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए उत्तराखंड की सराहना की।
देश में समान नागरिक संहिता लागू हो, यह हमारे संविधान की अपेक्षा है। उत्तराखंड ने संविधान की इस भावना को आगे बढ़कर और उस भावना को आगे बढ़ाकर पूरे देश को राह दिखाई है।
हरिद्वार में अगले वर्ष होने वाले कुंभ मेले का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने सभी हितधारकों से इस आयोजन को भव्य, पवित्र और स्वच्छ बनाने का आग्रह किया। बिहार के उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता सम्राट चौधरी राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। शपथ ग्रहण समारोह कल सवेरे 11 बजे पटना के लोक भवन में आयोजित किया जाएगा। श्री चौधरी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले भाजपा नेता होंगे। इससे पहले श्री चौधरी ने राज्यपाल सेवानिवृत्त जनरल सैयद अता हसनैन से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से गठबंधन का नेता चुना गया। जनता दल यूनाइटेड अध्यक्ष नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद इसकी घोषणा हुई है। उन्होंने हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली थी। इससे पहले भाजपा विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की।
नीतीश जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से बिहार में विकास की एक नई गाथा लिखेंगे सम्राट चौधरी जी, और पूरी पार्टी का नेतृत्व, हमारे बाकी विधायक साथी सब मिलकर बिहार को हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बनाकर ही चैन की सांस लेंगे।
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने विश्वास व्यक्त किया है कि श्री चौधरी के नेतृत्व में बिहार प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर होगा। श्री चौधरी ने कहा कि बिहार के लोगों की सेवा करने और उनके विश्वास तथा सपनों को साकार करने का ये एक अवसर है।
आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया, कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए। जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं से चुनावों के पहले बूथ स्तर के संगठनों को सशक्त बनाने का आग्रह किया है। बांग्ला नववर्ष की पूर्व संध्या पर बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत में श्री मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत मंत्र पर बल दिया।
बीते दिनों मुझे बंगाल के हर हिस्से में जाने का, लोगों से मिलने का अवसर मिला है। जो ऊर्जा, जो उत्साह, जो जोश मैं बीजेपी के प्रति देख रहा हूँ वो अद्भुत है। ये आप बूथ के स्तर के सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। मेरा बूथ सबसे मजबूत इस मंत्र के साथ आप टीएमसी की निर्मम सरकार के भय और बीजेपी के भरोसे को बहुत अच्छे से अपने बूथ पर लोगों तक पहुंचा रहे हैं।
दक्षिण दिनाजपुर जिले के गंगारामपुर में एक रैली में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल को विभाजित किए बिना दार्जिलिंग पहाड़ियों के गोरखा मुद्दे का समाधान करेगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल का विकास करेगी।
उत्तर बंग के लिए एक अलग 600 बेड का सभी टेक्नोलॉजी से युक्त कैंसर अस्पताल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हमारे युवाओं के लिए आईआईटी बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने मालदा रैली में राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने में असफल रहने पर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की।
84 लाख युवाओं ने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए अप्लाई किया है। ममता जी कहती है 5 लाख युवाओं को मैं रोजगार दूंगी और 84 लाख युवाओं ने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मांगा है। मजाक हो रहा है बंगाल के साथ।
हावड़ा में एक रैली में तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत कथित तौर पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने के लिए निर्वाचन आयोग की कड़ी आलोचना की। तमिलनाडु में भाजपा नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि राज्य के विकास और उन्नति के लिए एनडीए का सत्ता में आना जरूरी है। डीएमके प्रमुख और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने वेल्लोर में का सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके महासचिव इडापड्डी के पलानी सामी ने तिरुचिरापल्ली में डीएमके शासन की आलोचना करते हुए राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का आरोप लगाया। टीवीके के संस्थापक विजय ने कोयंबटूर और तिरुपुर में प्रचार किया। आकाशवाणी समाचार के विधानसभा चुनाव निर्वाचन क्षेत्र प्रोफाइल श्रृंखला में आज बात पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की।
दार्जिलिंग निर्वाचन क्षेत्र में 2,15,000 से अधिक मतदाता हैं। भारतीय जनता पार्टी के नीरज तमांग जिम्बा मौजूदा विधायक हैं। 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित 6 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। भाजपा ने इस बार नोमान राय को प्रत्याशी बनाया है। तृणमूल कांग्रेस समर्थित भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के उम्मीदवार विजय कुमार राय हैं। कांग्रेस से माधव राय चुनाव मैदान में हैं। भाजपा मतदाताओं को लुभाने के लिए जोर शोर से प्रचार में जुटी है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने अपने सहयोगी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा पर भरोसा जताया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
सरकार ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद देश में घरेलू एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है और किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति में कमी की कोई सूचना नहीं है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और अब तक 2,200 से अधिक नाविकों को वापस लाया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में स्थित भारतीय दूतावास हाई अलर्ट पर हैं और 24 घंटे हेल्पलाइन सेवाओं के जरिए नागरिकों को सहायता प्रदान की जा रही है। प्रभावित क्षेत्र से अब तक लगभग 95 लाख भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तकनीकी रूप से सक्षम और कुशल कार्यबल की आवश्यकता पर बल दिया है। गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग और साइबर डेटा सुरक्षा के विस्तार से राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा में व्यापक बदलाव आया है।
देश की प्रगति और विकास के लिए आंतरिक सुरक्षा अनिवार्य है। आने वाले समय में सुरक्षा परिपुष्ट और जटिल होती जाएगी। कुछ वर्ष पहले तो हम डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम, फिशिंग अटैक्स जैसे शब्दों से परिचित नहीं थे, लेकिन ये आज बहुत बड़े खतरे के रूप में हमारे सामने है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में स्थित वेदांत बिजली संयंत्र में बॉयलर फटने से हुए विस्फोट में 9 श्रमिकों की मृत्यु हो गई है। 40 से अधिक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हैं। 8 श्रमिकों की स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। ये संयंत्र डाबरा ब्लॉक के सिंघन तराई गांव में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ दुर्घटना में मरने वालों के प्रति दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों में अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रेणियों के श्रमिकों की मजदूरी में लगभग 3,000 रुपए तक की वृद्धि की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने आज शाम न्यूनतम मजदूरी में अंतरिम वृद्धि की घोषणा की। ये निर्णय नोएडा में श्रमिकों द्वारा वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया। राष्ट्र आज भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समावेशिता स्थापित करने, समान अधिकारों की गारंटी देने और सभी नागरिकों के लिए सांस्कृतिक और शैक्षिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए प्रयास किए। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति व्याख्यान में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और बुद्धिमत्ता के बल पर ही कानून, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान जैसे विषयों का अध्ययन किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री पीरे ओलिवियर गरीचांस ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने के बावजूद भारत की विकास संभावनाएं मजबूत बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने वर्ष 2025 में अच्छा प्रदर्शन किया। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 165 रन बना लिए थे। अंक तालिका में चेन्नई 9वें और कोलकाता 10वें स्थान पर है। राजस्थान पहले और पंजाब दूसरे नंबर पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति के संदर्भ में होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का शुभारंभ किया। कहा, ये गलियारा संपर्क और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करेगा और पर्यटन को बढ़ावा देगा। बिहार में भाजपा नेता सम्राट चौधरी कल राज्य में पार्टी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव प्रचार तेज। विभिन्न दलों के शीर्ष नेता प्रचार में जुटे। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में एक बिजली संयंत्र में हुए विस्फोट में 9 श्रमिकों की मौत। राष्ट्र ने आज संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 136वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ।